पृष्ठ संख्या 313, अध्याय 16, इतिहास दर्शन तथा इतिहासवाद, फिलोसफी ऑफ हिस्टोरी एंड हिस्टोरिसिज्म। प्रारंभ में इतिहासकारों ने संस्मरणों के आधार पर अपने पूर्वजों के कार्यों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इतिहास लिखा। उन लोगों ने अतीत की प्रत्येक घटना को इतिहास मान लिया, परंतु अधिकांश घटनाओं के पीछे मानवीय मस्तिष्क की भूमिका निर्णायक होती है। अतीत की घटनाओं के अंतस्तल में प्रवेश कर जब इतिहास का क्रियाकलापों के परिवेश में मानवीय मस्तिष्क की भूमि प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है तो इतिहास दर्शन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। दर्शन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे अनंत वाद विवाद का युद्ध स्थल कहा गया है। अतीत की घटनाएं उस समय विवाद पूर्ण हो उठी जब इतिहासकार अपनी अपनी दृष्टि से अतीत की एक ही घटना का निरूपण करने लगा। दर्शन न केवल मानसिक प्रक्रिया बल्कि सैद्धांतिक प्रक्रिया भी है, जिसका लक्ष्य सत्य की गवेषणा है। इतिहास के वाद विवाद की समस्या को कम करने के लिए दार्शनिक इतिहासकारों ने विभिन्न सिद्धांतों को अपनाया। परिणाम स्वरूप इतिहास का स्वरूप गूढ़ दर्शन बन गया। घटनाओं के पीछे निहित मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया ने इतिहास को विवादास्पद बना दिया। एक वैज्ञानिक की भांति इतिहासकार अतीत की घटना का निरीक्षण तथा परीक्षण एक प्रयोगशाला में नहीं कर सका तो उसने सैद्धांतिक पक्ष का आश्रय ग्रहण किया। अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार अतीतकालिक घटना का निरूपण किया। वैज्ञानिक प्राकृतिक तथ्य का निरीक्षण कर प्रयोग द्वारा स्थापित करता है। दर्शन सत्य के बौद्धिक अभिव्यक्ति है। वैज्ञानिक प्राकृतिक ज्ञान की अभिलाषा का मानवीय प्रयास है, जबकि इतिहास दर्शन मानवीय आत्मा के संतुष्टिकरण का प्रयास होता है। विज्ञान बाह्य जगत तथा दर्शन अंतर विश्व का अध्ययन है। विज्ञान हमें जीव को मारने तथा उसके घाव को भरने का ज्ञान प्रदान करता है तथा इतिहास दर्शन हमारे आनंदमय तथा सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए इतिहासकार अतीत का अध्ययन वर्तमान सामाजिक रुचि तथा सुखद भविष्य के लिए के निर्माण के लिए करता है। एक इतिहास दर्शन। कॉलिंगवुड के अनुसार वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहा जा सकता है, परंतु प्रोफेसर वॉल्स ने इतिहास दर्शन के अन्वेषण का श्रेय इटालियन दार्शनिक वीको 1680 से 1744 को दिया। हर्टन 1784 में अपनी रचना आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड द्वारा इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाया तथा हीगेल ने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास को गूढ़ विषय के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार इतिहास दर्शन 18वीं तथा 19वीं सदी के प्रख्यात मौलिक विचारकों की सर्वोत्कृष्ट देन और विश्व के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ उपहार है। वाल्टेयर के इतिहास दर्शन का अभिप्राय इतिहास का विश्लेषणात्मक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन है। सभी दार्शनिक इस तथ्य से सहमत है कि भौतिक विज्ञान का दार्शनिक लक्ष्य प्रकृति के वैज्ञानिक ज्ञान के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन होता है, परंतु इस प्रकार की अवधारणा इतिहास दर्शन के विषय में नहीं है। इतिहास में विषय की गूढ़ता के कारण नैतिकता का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। इतिहास न्यायार्थ है। न्यायार्थ का अर्थ है कि ऐसी अभ्यर्थना जो अपनी मूल्यवत्ता के कारण न्याय वहनीय अथवा धारणीय होती है। अभ्यर्थना से हमारा तात्पर्य अन्वेषार्थ से है। अन्वेष स्वभावतः मूल्यवान होता है, परिणामतः नेय भी। नियता अतीत और वर्तमान का भविष्य के लिए धारण करना है और अन्वेष्यता भविष्य का वर्तमान में धारण है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं और यह सापेक्षता काल के ऐतिहासिक होने के लिए अनिवार्य है। अतीत भविष्य के लिए और भविष्य अतीत में धारण किए हुए बिना काल केवल प्रतिबिंबित वर्तमान होता है। प्रतिबिंबित वर्तमान के अर्थ में कालिकता जीव धर्म है जो उसे अजीव से पृथक करता है, किंतु यथार्थानुपुष्ट कालिकता मनुष्य की विशेषता है। इतिहास का वैज्ञानिक अथवा विश्लेषणात्मक अध्ययन ही वाल्टेयर का अभिप्राय था। इतिहास चिंतन एक प्रकार की विधि है जिसमें इतिहासकार अतीत की घटनाओं की पुनरावृत्ति की अपेक्षा स्वयं के विषय में चिंतन करता है। इतिहास दर्शन से हीगेल का अभिप्राय विश्व इतिहास से है। कांते जैसे सापेक्षवादी वैज्ञानिक इतिहासकारों का अभिप्राय अतीत की घटनाओं के माध्यम से इतिहास में सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना है। इन दार्शनिक इतिहासकारों की अवधारणा के अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य स्वयं का चिंतन विश्व इतिहास तथा इतिहास के सामान्य नियमों से है। इसे इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास दर्शन के संबंध में उनका विचार अन्य दार्शनिकों से भिन्न है। उसके अनुसार इतिहास दर्शन अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। अतीत के परिवेश में इतिहासकार की मानसिक प्रक्रिया अथवा चिंतन को इतिहास दर्शन कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में अतीतकालिक घटना के संबंध में इतिहासकार की मानसिक गवेषणा तथा घटना के विषय में उसका निष्कर्ष इतिहास दर्शन होता है। इतिहास संस्कृति या व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिमा के उत्कीर्णन की प्रक्रिया की संज्ञा है। परिणामतः इतिहास दर्शन इस उत्कीर्णन की प्रक्रिया को अपनी ओर उन्मुक्त करना मात्र है। उत्कीर्णन निर्यात का आत्मान्वेषण अनिवार्यतः आत्मनिरीक्षण को पूर्व कल्पित करता है। इस प्रकार इतिहास दर्शन कहना उचित प्रतीत होता है। इतिहास तथा इतिहास दर्शन का परस्पर अभिन्न संबंध है। इतिहास दर्शन घटनाओं में एक घटना मात्र को देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामर्थ्य है। जो सफल होता है उसी का इतिहास होता है। इतिहास में ईसा मसीह का महत्व ईसाई धर्म की विजय से है, मार्क्स का महत्व लेनिन और स्टालिन के कारण, अन्यथा ईसा के नाम का पता नहीं होता और मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीतकालिक घटना में निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरूपित करना मात्र होता है। वॉल्स के अनुसार ज्ञान के सिद्धांत के रूप में इतिहास दर्शन एक प्रकार का ज्ञान है। इतिहास दार्शनिकों का प्रमुख कार्य वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से ऐतिहासिक घटना को बोधगम्य बनाना है। ऐतिहासिक ज्ञान की प्रक्रिया प्रामाणिक उपादानों की प्रक्रिया है। वह कल्पना मात्र न होकर निश्चित प्रमाणानुसंधान है। उसका सार अनुभव मूलक संभावना है और अंतर्दृष्टि परख या विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णयन है। इतिहास ज्ञान न विशेष विषयक प्रत्यक्ष है और न सामान्य विषयक अनुमान, उसे विशेष विषयक निर्णय कहा जा सकता है। कॉलिंगवुड ने इस तर्क को स्वीकार किया है कि इतिहास को मानसिक प्रक्रिया स्वीकार करने का यह तात्पर्य नहीं है कि इतिहास मनोविज्ञान है। ऐतिहासिक ज्ञान एक चिंतन की प्रक्रिया है। दार्शनिक पर आधारित इतिहासकार प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इतिहास विचार की एक प्रमुख शाखा है। ऐतिहासिक ज्ञान की अपनी विशेषताएं होती है। प्रकृति विज्ञान तथा धर्मशास्त्र की भांति इतिहास में विचार प्रधान होता है, इसलिए कॉलिंगवुड ने सभी इतिहास को विचार का इतिहास माना है। ऐतिहासिक ज्ञान के दो स्तर होते हैं, तथ्यात्मक तथा सत्यात्मक। तथ्य से तात्पर्य किसी वास्तविक घटना के अभिधायक वाक्य के अर्थ से है। सत्य से अभिप्राय मूल्य सहित अर्थ अथवा मान्य सार्थकता से है। तथ्य का निर्णय प्रमाण मूलक उपादान से है। विधाओं एवं संस्थाओं के समान दर्शन को भी एक जीवित समाज की उपजों में एक उपज के रूप में देखा जा सकता है। वह भी उन्हीं की तरह उससे पुष्टि पाकर निरंतर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार की विधि इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण है, न कि दार्शनिक के लिए। दार्शनिक के लिए इतिहास और दर्शन का संबंध एक समस्या के रूप में होगा। यह समस्या इतिहास के क्षेत्र में न होकर दर्शन के क्षेत्र में होगी। इतिहास प्रकृति से अधिक आधारभूत है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान स्वयं ऐतिहासिक उपज है। चंद्रमा पर मानव अवतरण ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि उसकी सफलता के पीछे पूर्ववर्ती मानवीय प्रयासों का इतिहास सन्निहित है। इसी प्रकार प्रकृति का ज्ञान भी ऐतिहासिक होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है। यह ज्ञान एक प्रकार से ऐतिहासिक होता है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों की एक जाति है। इतिहास को यथार्थ के बढ़ते हुए आत्म प्रकाश के रूप में समझा गया है और यह इस अर्थ में दर्शन से अभिन्न माना गया है। आत्मा भी व्यक्ति के रूप में इतिहास समाज की एक अभिव्यक्ति है। इसे संपूर्ण मानवता की अभिव्यक्ति समझ लेना एक महान भूल है, क्योंकि मानवता का एक समाज नहीं होता है। काल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समाज के स्वरूप में विभिन्नता का होना अनिवार्य है। प्रत्येक युग स्थान विशेष तथा समाज विशेष की अभिव्यक्ति दार्शनिक करते हैं, इसलिए कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन को मूल्य संपेक्ष स्वीकार किया है। द्वंद्व से ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रगतिशील होती है। इस गतिशीलता के कारण प्रत्येक युग में समाज के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। दासता, सामंतवाद, निरंकुश शासन, क्रांति, प्रजातंत्र, शासन प्रणाली का उद्भव एवं विकास परिवर्तित समाज एवं इतिहास की गतिशीलता का परिचायक है। परिवर्तित समाज के इतिहासकार तथा दार्शनिक समसामयिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों को समसामयिक सामाजिक मूल्यों के अनुसार देखते हैं। इस प्रकार इतिहास की गतिशीलता के साथ इतिहास दर्शन का स्वरूप भी निरंतर परिवर्तनशील होता है। इतिहास दर्शन अनिवार्यतः चेतना की इतिहास रूपी प्रक्रिया की एक अवस्था है। इतिहास में अतीत अनुचिंतन है। इस प्रकार इतिहास दर्शन किसी विशेष समाज अथवा ऐतिहासिक युग के चित्त की क्रियात्मक छवि होती है। समयानुसार इतिहास निरंतर बदलता रहता है, इसलिए इतिहास दर्शन को भी बदलना होगा। सभी पदार्थों का इतिहास होता है, इसलिए दर्शन भी इतिहास और दर्शन के तादात्म्य का कारण बताते हुए क्रूचे ने कहा कि दार्शनिक के प्रकथन लक्षण या संस्थान का आविर्भाव एक निश्चित व्यक्ति के मन में देश काल के एक निश्चित बिंदु पर और निश्चित परिस्थितियों के अधीन है। प्रकृति ऐतिहासिक है क्योंकि प्रकृति विज्ञान ऐतिहासिक परिस्थितियों के अधीन है। इस प्रकार दर्शन भी ऐतिहासिक है क्योंकि दार्शनिक चिंतन ऐतिहासिक परिस्थितियों के अधीन है। विधियुक्त ऐतिहासिक शोध के माध्यम से किसी समस्या के अध्ययन को इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। ऐतिहासिक गवेषणा इतिहास दर्शन का मूल तत्व है। दर्शन का अभिप्राय सार्वभौमिक सत्य का अन्वेषण है। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से सत्यम, शिवम, सुंदरम का अन्वेषण करता है। वह सत्य जो समसामयिक मानवीय समाज के लिए कल्याणकारी है। मानव कल्याण के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप सुंदर होता है। प्रत्येक युग का दार्शनिक इतिहासकार सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हीं तथ्यों को प्रकाश में लाता है जो समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अन्वेषण होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य तथ्य एवं सत्य का यथार्थ निरूपण है। इस प्रकार इतिहास दर्शन ज्ञान पर आधारित एक विशेष प्रकार की गवेषणा है। दार्शनिक इतिहास का समसामयिक सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए कॉलिंगवुड ने कहा है कि प्रत्येक दार्शनिक का अपना दर्शन होता है। वह अपने ढंग से काल और परिस्थितियों के संदर्भ में घटना विशेष पर चिंतन करता है तथा समाधान ढूंढता है। दर्शन को समसामयिक विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान का अध्ययन माना जा सकता है। युग की सामाजिक समस्याओं के परिवेश में हिगेन, कांट, हर्डर तथा फीत्से ने ऐतिहासिक ज्ञान के माध्यम से संतोषजनक समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। ब्यूरी, ब्लैक, बेकर तथा वियर ने भी ऐतिहासिक साम्यवाद को युग की आवश्यकता स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स ने भौतिकवादी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का निरूपण किया है। 20वीं सदी की पुकार विश्व भ्रातृत्ववाद है। स्पेंगलर तथा टैनबी ने विश्व की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके मानव एकता के रूप में अपना इतिहास दर्शन प्रस्तुत किया। इन विद्वानों ने ऐतिहासिक साक्ष्य का सहारा लिया है। उन लोगों ने समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के अनुसार मनोनुकूल निष्कर्ष निकाला है। परिणामतः युग की सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इतिहास दर्शन भी निरंतर परिवर्तनशील रहा है। डिल्थे, रिकर्ड, क्रोचे तथा बोसांकेक ने स्वीकार किया है कि इतिहास एक ज्ञान है तो इसका स्वरूप दार्शनिक होना चाहिए। इतिहास दर्शन की अपनी उपादेयता है। इतिहास हमें स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ऐतिहासिक अध्ययन वस्तुतः आत्म गवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक आत्मबोध से मनुष्य अपने वर्तमान कालिक जीवन को सुचारू रूप से नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि अतीत का भाग जाने अथवा अनजाने में सदैव हमारे साथ रहता है। कॉलिंगवुड ने ठीक ही कहा है कि सभी इतिहास विचार का इतिहास होता है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक विचार का स्वरूप ऐतिहासिक होता है। इतिहास दर्शन एक आत्मशासित शिक्षण है जिसकी ज्ञान मीमांसीय समस्याएं हैं। इतिहास गवेषणा को यदि ज्ञान मीमांसीय स्वीकार किया जाए तो इसे संपूर्ण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। मानवीय क्रियाओं में अंतर्निहित विचारों को प्रतिबिंबित करना ही इतिहास दर्शन का अभिप्राय है। उसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं, संपूर्ण मानवीय क्रिया कल्पना अथवा वर्तमान में उसकी पुनर्रचना। प्रथम भाग का संबंध घटना की वास्तविकता से है तथा दूसरे का संबंध उस घटना के विषय में वैज्ञानिक चिंतन होता है। प्रोफेसर ब्राड के शब्दों में प्रथम परिकल्पनात्मक है तथा दूसरा विश्लेषणात्मक। दोनों साधनों का लक्ष्य इतिहास दर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का प्रस्तुतीकरण है। इसी को इतिहास दर्शन कहा जा सकता है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतीकरण है। इस प्रकार की अवधारणा वैज्ञानिक युग की देन है। प्रारंभ में इतिहास को दर्शन तथा साहित्य का अंग स्वीकार किया जाता था। अरस्तु ने इतिहास को कविता से तुच्छ स्वीकार किया है। बाल्तेयर ने इतिहास को मृत अतीत के प्रति एक चाल कहा है। उसने स्वीकार किया है कि अपनी कृतियों के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य स्वयं को अच्छी तरह समझ सकता है। वस्तुतः सभ्य समाज उसके अध्ययन के लिए विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करता है। नेबूर तथा रामके ने 19वीं सदी में इतिहास को वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत किया। रूसी, कार्लायल, हीगेल, कांटे, मिल, मार्क्स तथा बकल ने इतिहास में सामान्यीकरण के सिद्धांतों को प्रतिरोपित कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि अतीतकालिक मानवीय कार्यों का प्रत्यक्षीकरण तथा अवलोकन संभव नहीं है। क्रोचर के अनुसार ऐतिहासिक पुनर्रचना अनुभव मूलक तथा इतिहासकार के मस्तिष्क की उपज है। इस प्रकार मनुष्य के अध्ययन का विषय मनुष्य है। इतिहास में मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन ऐतिहासिक ज्ञान के सामान्य रूप पर केंद्रित हो गया है। इतिहास को तार्किक विश्लेषण के उपकरणों से प्रयुक्त करने का प्रयास किया जा सकता है। इतिहास की मूल समस्या यह है कि क्या इतिहास सामाजिक विज्ञान बन सकता है या उसे बनने का प्रयास करना चाहिए। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य इतिहास चिंतन की मूलभूत समस्याओं पर विचार करना तथा उसे वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करना है। इतिहास की प्रमुख समस्याएं हैं। इतिहास का अविच्छिन्न ज्ञान रूप ऐतिहासिक यथार्थ तथ्य वस्तुनिष्ठा व्याख्या तथा मूल्य। एक, इतिहास अविच्छिन्न ज्ञान के रूप में। ज्ञान के दो मार्ग हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान तथा मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। इतिहास दर्शन के जो उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। युग का निर्माण बीते हुए अतीत के ऊपर होता है, अतः वर्तमान भूत से संबद्ध है और अर्थपूर्ण ढंग से संपूर्ण भूत को अपने में समेटे हुए है। इतिहासकार का कार्य मस्तिष्क से प्रभावित विश्व को समझना है। अतीत का ज्ञान वर्तमान को नियंत्रित करता है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। ए एल राउस ने सर वाल्टर रेले के विचार को उद्धृत करते हुए कहा है कि इतिहास का अभिप्राय अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो हमारे कार्यों एवं इच्छाओं का मार्गदर्शन कर सके। इस प्रकार अतीत वर्तमान तथा भविष्य का पारस्परिक संबंध ज्ञान की अविच्छिन्नता का परिचायक है। ई एच कार के अनुसार इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है। अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद का अभिप्राय ज्ञान की अविच्छिन्नता है। इतिहासकार इस ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक ज्ञान समाज के लिए उपादेय होता है। इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों से संतुष्ट न होकर वह समाज के लिए क्या, क्यों और कहां का निरंतर उत्तर देता रहता है। उसके द्वारा सामाजिक प्रश्नों का उत्तर अविच्छिन्न ज्ञान है। दो, ऐतिहासिक यथार्थता का तथ्य। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है। इतिहास विषयनिष्ठ होता है। इसका संबंध संपूर्ण मानवता से न होकर व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, समाज विशेष तथा काल विशेष से होता है। इतिहास का संबंध अतीत से है। अतीत के तथ्यों का प्रत्यक्षीकरण अथवा अवलोकन संभव नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के संबंध में सभी इतिहासकारों का सहमत होना कठिन है। यद्यपि इतिहासकार इस बात का दावा करता है कि उसका निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ भूतकाल से है, जगत का सत्यान्वेषण कठिन है। किसी दृष्टा के लिए अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। वर्तमान की अपेक्षा अतीत के तथ्यों का निर्धारण कठिन है और इस कठिनता का कारण तथ्यों की बहुलता है। इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों का ही चयन करता है। इस प्रकार इतिहास अध्ययन में विषय निष्ठा की समस्या संयोजित है। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार यद्यपि अतीत का यथावत प्रत्यक्षीकरण कठिन है, फिर भी वर्तमान में उससे संबंधित साक्ष्य प्रचुर मात्रा में पांडुलिपियों, भवनों, सिक्कों तथा अभिलेखों में उपलब्ध है। इतिहासकार इन साक्ष्यों के यथार्थान्वेषण द्वारा अतीत को पुनर्जीवित कर प्रत्यक्षीकरण कराने में समर्थ होता है। इस प्रयास के द्वारा वह दावा करता है कि अतीत का प्रत्यक्षीकरण यथावत तथा वस्तुनिष्ठ है। विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार तथ्यों को यथावत स्वीकार कर न करके उनकी यथार्थता का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। इस प्रकार वह इतिहास को विषय निष्ठा के दोषों से अलग करने का प्रयास करता है। तथ्यों के आलोचनात्मक परीक्षण के साक्ष्य होते हैं। इस विधि को ही तथ्यों का सत्यान्वेषण कहते हैं। 3. ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा वैज्ञानिक विधा की विशेषता है। वैज्ञानिक के वस्तु निष्ठात्मक निष्कर्ष को सभी प्रकार के स्वर से स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकार भी इतिहास को वस्तु निष्ठात्मक विशेषताओं से अलंकृत कर उसे विज्ञान के समकक्ष लाना चाहता है। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने तो स्पष्ट कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। इतिहास को पूर्ण रूपेण विज्ञान स्वीकार कर लिया जाए तो इसमें भी वस्तुनिष्ठा अपेक्षित है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की समस्याएं। डार्डेन ने कहा है कि स्वयमेव कोई भी तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तथ्य को विषय से अलग कर वस्तुनिष्ठा प्रतिरोपित की जाती है। इतिहासकार अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कृति, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष तथा भ्रांति के परिवेश में करता है। उसका संबंध किसी विशेष धर्म, जाति, समाज और वातावरण से होता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि संस्कृतियों से परिष्कृत मनुष्य इतिहास के अध्ययन में अपने को अलग कैसे कर सकता है। कार्ल बेकर के अनुसार अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग में समान रूपेण नहीं हो सकता है। बियर्ड के अनुसार इतिहास का प्रत्येक छात्र भलीभांति जानता है कि ऐतिहासिक तथ्यों का चयन इतिहास का द्वेष, भ्रांति, व्यक्तिगत झुकाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों से प्रभावित होकर करता है। ऐतिहासिक नियमों एवं विधाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। प्रोफेसर वॉल्स ने तो स्पष्ट कहा है कि इतिहास का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करना चाहिए। कार्ल बेकर ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास की रचना प्रत्येक मनुष्य की भावना के अनुकूल होनी चाहिए। जे ए रॉबिन्सन के अनुसार आधुनिकतर इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा एकत्रित ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग अपने युग की आवश्यकता के अनुसार करता है। इस प्रकार इतिहास की पुनर्रचना सामाजिक आवश्यकता के अनुसार होती है। क्रोचे के अनुसार मनुष्य की आत्मा को अपने युग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास की पुनर्रचना इस आवश्यकता का परिणाम है। पी गार्डिनर ने भी सामाजिक आवश्यकता के अनुसार इतिहास लेखन पर जोर दिया है। मानव जीवन की रुचियां तथा निहित स्वार्थों का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तित होता रहता है। उसमें समानता की आशा एक भूल है। इसमें विभिन्नता का होना अवश्यंभावी है। हेजलिट ने लिखा है कि कला स्वार्थ जीवन तथा भाषण में व्यक्ति भावनाओं से निर्णय करता है। जीपी गूच के अनुसार रक्त तथा मांस से युक्त लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मुद्रित पृष्ठों में होती है। रांके ने कहा है कि इतिहास लेखन अंतर चेतना का विषय है। उपर्युक्त समस्याओं को मान्यता प्रदान करने का तात्पर्य इतिहास में वस्तुनिष्ठा का समावेश जटिल है, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास में वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता को स्वीकार किया है। बटरफील्ड ने तो कहा है कि सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ होता है, परंतु शोध इतिहास में इसका अभाव दिखाई देता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठा को प्रतिरोपित करने के लिए इतिहासकार की व्यक्तिगत योग्यता आवश्यक है। विश्व के प्रख्यात इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि इतिहास को प्रचार का साधन नहीं बनाना चाहिए। जी एन क्लार्के के अनुसार इतिहास में तथ्य होते हैं। विवादपूर्ण व्याख्या के आवरण में छिपे हुए यथार्थ तथ्य को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। बौद्धिक वस्तुनिष्ठा का तात्पर्य व्यक्तिगत तत्वों को इतिहास प्रक्रिया से अलग करना है। पी गार्डिनर ने ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की उपादेयता के संबंध में कहा है कि इतिहासकार को व्यक्तिगत रुचि के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। डिल्थे ने भी इस आवश्यकता को अनुभव किया है। मानव स्वभाव का वस्तुनिष्ठ अध्ययन वस्तुनिष्ठ इतिहास का आधार होना चाहिए। सिमेल ने भी इतिहास के वस्तुनिष्ठ स्वरूप पर जोर दिया है। इतिहास में वस्तुनिष्ठा का समावेश उस समय अत्यधिक सरल हो जाएगा जब विभिन्न सिद्धांतों अवधारणाओं तथा दृष्टिकोणों को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की जाए। रेनियर ने इतिहास में नियमों एवं विधाओं को प्रधानता दी है क्योंकि इतिहास लेखन की आचार संहिता इतिहास में निहित है, इतिहासकार में नहीं। इतिहास अनुशासन में आस्थावान इतिहासकार को ही इतिहास लिखना चाहिए। इतिहास में तथ्यों को प्रधानता देकर उसके वस्तुनिष्ठ स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान समाज में इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठ रचना की अपेक्षा करता है। 4. ऐतिहासिक व्याख्या। इतिहासकार के ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का प्रस्तुतिकरण होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास अतीतकालिक मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। क्रिया का विचार प्रधान होना स्वाभाविक है, अतः इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य क्रियाओं में अंतर्निहित विचार की व्याख्या है। विचार का स्वरूप अनुभव मूलक है, जिसका अनुभव संभव नहीं है उसका न तो इतिहास हो सकता है और न ऐतिहासिक व्याख्या। इतिहासकार पहले हेतुओं को सूचीबद्ध करता है, तत्पश्चात वैज्ञानिक विधा के माध्यम से कारण तथा परिणाम को ढूंढता है। इतिहासकार अपनी व्याख्या में क्या घटित हुआ है इसी से संतुष्ट नहीं होता, वह इस तथ्य की व्याख्या भी करता है कि घटना क्यों घटी। 1789 में फ्रांस की राजी क्रांति के कारण भारत में तुर्की आक्रमण की सफलता, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण आदि की व्याख्या इतिहासकार से अपेक्षित है। पश्चिमी यूरोप में सामंतशाही व्यवस्था के परिणाम स्वरूप क्यों राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय के साथ अनाक्रमण संधि की, क्यों भारत में जाति प्रथा अब भी प्रचलित है, क्यों प्राचीन भारत में बौद्धिक प्रक्रिया अधिक जागृत रही और तत्पश्चात धीरे धीरे उसका लोप होता गया, क्योंकि मध्ययुगीन भारत में सांप्रदायिक भावना नहीं थी और आधुनिक भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इतिहासकार को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आकस्मिकता तथा व्यक्ति विशेष की समस्या ऐतिहासिक व्याख्या को जटिल बना देती है। अलेक्जेंडर महान की आकस्मिक मृत्यु का कोई आकस्मिक निमित्त नहीं था। इतिहास में व्यक्ति विशेष की भूमिका भी एक जटिल समस्या है। इतिहासकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति विशेष स्वतंत्र नहीं है और न तो इतिहास में उसकी भूमिका का कोई अस्तित्व होता है। व्यक्ति किसी समाज का अभिन्न अंग होता है, वह सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभावों से प्रभावित होता है। मनुष्य समाज तथा परिस्थितियों की उपज होता है और उनसे नियंत्रित होता है। सामाजिक तथा राजनैतिक प्रवाह के विपरीत चलने वाला कोई भी व्यक्ति इतिहास में सफल नहीं रहा है। लुई 15वां, लुई 16वां, मेटरनिक, मोहम्मद तुगलक तथा औरंगजेब की असफलता का कारण इतिहास की गति के प्रवाह के विपरीत चलने का प्रयास था। यह भी सत्य है कि इतिहास गति के मध्य में वह अपनी कुछ स्वतंत्रता कायम रख सकता है। इतिहास की सामान्य दिशा में अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए उसे प्रयास के द्वारा जन सामान्य तक अपने विचारों को प्रेषित करना पड़ता है। इस प्रकार वह इतिहास गति के प्रवाह को अपने मनोनुकूल बना सकता है। मनुष्य द्वारा रचित इतिहास मानव स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है। मानवीय क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में इतिहास बोधगम्य तथा अर्थवान होता है। इतिहास के नियम सिद्धांत। 1942 में कार्ल जी हेम्पल ने अपने एक लेख द फंक्शन ऑफ जनरल लॉ इन हिस्ट्री में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इतिहास में मानवीय घटनाओं की व्याख्या भौतिक जगत की भांति वैज्ञानिक विधाओं द्वारा की जा सकती है। वैज्ञानिक विधि से उनका तात्पर्य उपयुक्त साक्ष्यों से है जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित कर सके और संतोषजनक निष्कर्ष में सहायक हो सके। भौतिक जगत में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, ऋतु परिवर्तन इत्यादि। भौतिक जगत की परिवर्तनशील घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने में समर्थ होता है। वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। इतिहास की अवयवी वैज्ञानिक व्याख्या के संबंध में इब्न खल्दून ने कहा है कि राजवंश का उद्भव, उत्थान और पतन कुछ नियमों के अंतर्गत होता है। प्रथम चरण में राजवंश की नींव विशेष व्यक्ति द्वारा पड़ती है। द्वितीय चरण में युद्धों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार और संगठन होता है। तृतीय चरण में शासक भोग विलास में विलीन रहते हैं और चतुर्थ चरण में राजवंश का पतन अवश्यम्भावी हो जाता है। इन नियमों के विपरीत इतिहास गति के प्रवाह को नहीं बदला जा सकता है। सुधार प्रयासों के द्वारा उसकी नियति की अवधि बढ़ाई जा सकती है, परंतु इतिहास गति को बदलना संभव नहीं है। स्पेंगलर तथा टैनबी ने विश्व की प्रमुख संस्कृतियों के उत्थान और पतन की व्याख्या में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक की भांति इतिहासकार भी व्याख्या में सामान्यीकरण सिद्धांतों का सहारा लेता है। रूस के 1917 की क्रांति की व्याख्या करते समय इतिहासकार 1989, 1830, 1848 में फ्रांस की क्रांतियों के कारणों पर दृष्टिपात करता है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन उसके कार्य को सरल बना देता है। लैंड एक्टन के अनुसार सत्ता भ्रष्ट करती है। आर्थिक स्थायित्व की रक्षा में असमर्थ सरकार गिर जाती है। विलियम ड्रेने हेम्पल की ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक विधा के प्रयोग की कटु आलोचना की है। उसके अनुसार इतिहासकार केवल घटित घटनाओं का वर्णन करता है, उसका कार्य भविष्यवाणी करना नहीं है बल्कि घटना मात्र को स्पष्ट करना है। रेंजे म्योर ने अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कृषि व्यवस्था के प्रति उदासीनता, औद्योगिक उत्पादन में विशेष अभिरुचि, यातायात के साधनों में सुधार आदि एक सामाजिक क्रांति थी। अतः ऐतिहासिक व्याख्या में इतिहासकार का कार्य क्या है, क्या और क्यों के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि घटना क्या थी। विलियम डे के अनुसार इतिहासकार की व्याख्या का यही लक्ष्य होना चाहिए। वह घटना को संभव बनाता है, अपरिहार्य नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता को संभव बना दिया। भारत की स्वतंत्रता कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इतिहासकार राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर भारत की स्वतंत्रता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। विलियम डे के अनुसार भारत की स्वतंत्रता एक प्रकार की ऐतिहासिक व्याख्या है। इतिहास में मानवीय घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं है और न तो इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नियमों को ढूंढा जा सकता है। नियमों के आधार पर ऐतिहासिक व्याख्या का तात्पर्य तथ्यों का तोड़ मरोड़ करना होगा। सामान्य नियम यह है कि युद्ध में शक्तिशाली की विजय होती है। 1526 में पानीपत तथा 1527 में खनवा के युद्धों में अधिक सैनिक शक्ति के बावजूद इब्राहिम लोधी और राणा सांगा को बाबर द्वारा पराजित होना पड़ा। परिणाम नियम के विपरीत हुआ है। फ्रांस में लुई 16वें तथा भारत में औरंगजेब के अलोकप्रियता का कारण प्रजा विरोधी नीतियां थी। यही उनकी असफलता का कारण सिद्ध हुआ। परंतु प्रजा विरोधी नीति के बावजूद हिटलर जर्मनी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक घटनाएं नियमों के अधीन नहीं होती है। ऐतिहासिक व्याख्या इतिहासकार की मानसिक पुनर्रचना होती है। वह घटनाओं के प्रमुख पात्रों की मानसिक प्रक्रिया की अनुभूति करता है। परिणाम स्वरूप घटना चित्र को अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवित कर यथावत प्रस्तुत करता है। परिप्रेक्ष्य में इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या में अनुभव तथा विचार के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अतः ऐतिहासिक व्याख्या नियमों के अधीन नहीं हो सकती है। मूल्य संपृक्त व्याख्या मनुष्य मूल्यों के संदर्भ में कार्य करता है। प्रत्येक युग के समाज का अपना मूल्य होता है। जे ए रॉबिन्सन ने स्पष्ट लिखा है कि आधुनिक इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा एकत्रित सामग्री का प्रयोग अपने युग की आवश्यकताओं को के लिए करता है। इस प्रकार इतिहास की पुनर्रचना प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। एडवर्ड मेयर ने समसामयिक आवश्यकता को इतिहास की पुनर्रचना के लिए महत्वपूर्ण माना है। मेंडेलबॉम के अनुसार एडवर्ड मेयर द्वारा सुदूर अतीत का चित्रण अपने युग की वाणी तथा अपने संप्रदाय के आदर्शों के इच्छानुसार होती है। वॉल्स ने भी इस तथ्य को मान्यता देते हुए कहा है कि इतिहास का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से होना चाहिए। कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग के आवश्यकता अनुसार इतिहास लिखता है। प्रत्येक युग में इतिहास स्वरूप में परिवर्तन अवश्यंभावी है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक व्याख्या का मूल्य संपृक्त होना स्वाभाविक है, परंतु विश्लेषणात्मक दार्शनिक इतिहासकार अपने को मूल्यों के प्रश्नों से दूर रखने का प्रयास करता है। वह प्रश्नों को तर्क और सूक्ष्मता में रूपांतरित करता है। इतिहास सत्यान्वेषण का संबंध काल, स्थान और व्यक्ति विशेष से होता है। इतिहासकार का कार्य है इतिहास को बोधगम्य बनाना, और यह एक प्रकार का अर्थ है। प्रोफेसर वॉल्स ने हेम्पेल के विचार को अस्वीकार करते हुए डिल्थे के विचार को स्वीकार किया है। ऐतिहासिक घटनाओं की अंतर संबद्धता को समझने के लिए उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है, और यही इसका अर्थ है। वैराक्लव पश्चिम सभ्यता की 20वीं सदी की नैतिक विफलताओं को इतिहासवाद की उस प्रवृत्ति को कारण मानता है जो सभी सत्यों को सापेक्ष मानती है। नेबूर का ईसाई दृष्टिकोण एक लक्ष्योन्मुख इतिहास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें परमात्मा का विधान, व्यक्ति की संकल्पेक्षा और इतिहास की नैतिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐतिहासिक साम्यवाद। विश्लेषणवादी इतिहास दर्शन में इतिहासकारों ने इतिहास की मूलभूत समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक साम्यवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक साम्यवाद एक विचारधारा है जिसके माध्यम से मानवीय कार्यों का विश्लेषण संभव है। इसके तीन प्रमुख तत्व हैं: एक, आकस्मिकता; दो, आवश्यकता; तीन, तर्क। एक, आकस्मिकता इतिहास का वह तत्व होता है जो इतिहास की गति को आशा के विपरीत अकस्मात प्रवाहित करता है। राणा सांगा तथा बाबर के बीच खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मस्तक पर तीर के घाव ने इतिहास गति को अकस्मात प्रभावित किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू का तीर द्वारा सहसा घायल हो जाने के परिणाम स्वरूप इतिहास की गति को प्रभावित होना पड़ा। थानेश्वर के युद्ध में हाथी के मस्तक में तीर की चोट ने विजय को पराजय में परिणत कर दिया। हेनरी अष्टम का एन बोलीन के प्रति प्रेम ने इंग्लैंड में सुधार का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार इतिहास की गति को आकस्मिकता ने सदैव प्रभावित किया है। दो, आवश्यकता। आवश्यकता अनुसंधान की जननी है। इतिहास की गति को आवश्यकताओं ने समय समय पर नवीन मोड़ दिया है। आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान तथा गवेषणा प्रगति चक्र को क्रियाशील बनाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान, नाविकों द्वारा सुदृढ़ देशों के अन्वेषण, आंदोलन तथा क्रांतियों ने इतिहास को सदैव नवीन स्वरूप प्रदान किया है। तीन, तर्क। मानवीय कार्यों के पीछे दीर्घकालीन परंपराएं क्रियाशील रहती हैं। एक युग से दूसरे युग में विचारों और परंपराओं का संप्रेषण होता रहता है। यहूदियों, स्कॉट निवासी, प्रशियंस, जापानी तथा भारतीयों के कार्यों एवं विचारों की दीर्घकालीन परंपराएं प्रभावित करती हैं। विचारों की इन परंपराओं ने इतिहास की गति को सदैव प्रभावित किया है। स्कॉटिश खर्चीले, यहूदी चतुर, प्रशा निवासी परिश्रमी, अंग्रेज गंभीर, फ्रांसीसी क्रांतिकारी, भारतीयों में आदान प्रदानात्मक क्षमता परंपराओं का ही परिणाम है। इस प्रकार विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या में ऐतिहासिक साम्यवाद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के तर्क दार्शनिकों को कुछ नियमों के प्रतिपादन में सहायक होते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों तथा तर्कशास्त्रियों ने इतिहास को नियमों के आवरण से ढकने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक साम्यवाद इतिहास की व्याख्या का एक आधुनिकतम प्रयास है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, स्पेक्युलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। यदि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन प्राचीनतम है। इसका उद्भव प्लेटो तथा अरस्तु से माना जाता है। इतिहास के कालक्रम की प्रगति के साथ इस अवधारणा का निरंतर विकास होता रहा है। परिकल्पनात्मक इतिहास से दार्शनिकों का अभिप्राय ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का विशेष अर्थ तथा लक्ष्य को ढूंढना है। यदि इतिहास की अपनी गति स्वर तथा लक्ष्य है, तो इसे प्रकाश में लाना है। इन लोगों ने इतिहास की परियोजना को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास में अंतर्निहित परियोजना लक्ष्य तथा विशेष अर्थ होता है। ऐतिहासिक घटनाएं इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती रही हैं, अतः इन परियोजनाओं तथा लक्ष्यों को मानवीय प्रयास भी नहीं रोक सकता है। इतिहास की धार्मिक अवधारणाएं इन विचारों की पुष्टि करती है। यूनानी इतिहास की अवधारणा चक्रात्मक है, मानवीय दुख तथा सुख चक्रात्मक परियोजना के अनुसार नियंत्रित होते रहते हैं। भारतीय अवधारणा के अनुसार समय समय पर ईश्वर का अवतार मनुष्य के दुखों का अंत करने के लिए होता है, अतः इतिहास में ईश्वरीय हस्तक्षेप अपरिहार्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाभ्याम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईसाई अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं में ईश्वरीय इच्छा प्रधान है, मान्यता प्रदान की है। इस्लामी अवधारणा ने भी ईश्वरीय इच्छा को ही ऐतिहासिक घटनाओं में मान्यता प्रदान की है। इन तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि इतिहास की अपनी गति स्वर और परियोजना है जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। परिकल्पनात्मक इतिहास दार्शनिकों का प्रयास इन्हीं गूढ़ रहस्यों का तथ्यान्वेषण है। इब्न खल्दून। पाश्चात्य दार्शनिकों के पहले भी अन्य विचारकों ने इतिहास के गूढ़ रहस्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। ऐसे विचारकों में इब्न खल्दून का नाम अग्रगण्य है। इब्न खल्दून की मौलिकता आश्चर्यजनक है। वे इस्लामी जगत के एक निराले इतिहासकार थे। राजवंशों, साम्राज्यों तथा समाजों की अवयवी व्याख्या करने वाले वे सर्वप्रथम इतिहासकार हैं। शरीर की भांति इनकी भी जन्म, विकास, क्षय और अंत होता है। उनके अनुसार इतिहास समाजों का जीव विज्ञान है। इसका कार्य मृत समाज के शवों का वर्गीकरण, विश्लेषण, परीक्षण, उनके शारीरिक विधान का निर्माण और वृद्धि की प्रक्रिया का अन्वेषण और अनुसंधान और उनके विकास एवं विजय की प्रवृत्तियों और नियमों का निर्धारण है। समाज की यह अवयवी तथा जीव वैज्ञानिक व्याख्या उन्हें प्रख्यात दार्शनिकों की श्रेणी में लाती है। इब्न खल्दून का मानवीय दृष्टिकोण बड़ा विशाल था। वे दास प्रथा के प्रबल विरोधी थे। परंपरागत शासन पद्धति उनकी रुचि के विपरीत थी। व्यापारियों का शोषण उन्हें खलता था। किसी भी राष्ट्र के इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले इब्न खल्दून सर्वप्रथम विचारक तथा दार्शनिक थे। वीको। वीको को इटली का एक महान दार्शनिक इतिहासकार माना जाता है। इतिहास के संबंध में वीको ने आग्रह पूर्वक कहा था कि इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। प्रकृति ईश्वर की रचना है और उसका ज्ञान केवल ईश्वर को ही हो सकता है। इतिहास का रचयिता मनुष्य है, क्योंकि उसका निर्माण एवं सर्जन उसने स्वयं किया है। अतएव मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा इतिहास को अधिक स्पष्ट रूप से जान सकता है। इतिहास आत्म प्रकाश किए है। इसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है, जिसे बहिर्भूत प्रतिमानों की सहायता के बिना प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। इतिहास में मनुष्य उन्हीं वस्तुओं और प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसका निर्माण एवं सर्जन उसने स्वयं किया है। इतिहास वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा भाषा, रूढ़ी, नियम, शासन आदि के सर्जन विकास में सन्निहित है। इतिहास मानव चेष्टा और चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से निष्पन्न है। मनुष्य एवं इतिहास का निर्माता है और उसकी प्रकृति में सर्वत्र मौलिक समानता मिलती है। इतिहास में अक्षुण्णता और क्रम बना रहता है। इतिहास गति के दो पक्ष होते हैं, कोश तथा रिकोश। वीको के अनुसार प्राचीन काल कोश का युग था तथा मध्य काल रिकोश का। कांट 1724 से 1804। जर्मनी के दार्शनिकों में कांट का स्थान महत्वपूर्ण है। 1784 में इन्होंने बर्लिन मासिक में अपना रोचक लेख आइडिया ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री फ्रॉम कॉस्मोपॉलिटन पॉइंट्स ऑफ व्यू प्रकाशित किया है। उनका विचार ऐतिहासिक था। प्रत्यक्ष जगत में वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष होता है। बाह्य जग प्रगति उन आंतरिक शक्तियों की कलेवर मात्र होती है जो निश्चित नियम के अनुसार मानव जगत में कार्यशील हो रहती है। बाह्य विकास प्रकृति के संपूर्ण आंतरिक विकास का प्रतिबिंब होता है। यह प्रक्रिया मनुष्य को नियंत्रित करती है, मनुष्य द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। वस्तु के विविध स्वरूपों के ऐतिहासिक परिवर्तन का अन्वेषण ही वास्तविक दर्शन है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन काल के तोल पर घूमती हुई अक्षुण प्रक्रिया है, जो सभ्यता और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रही है। इतिहास केवल तथ्यों का परिगणन अथवा घटना की तालिका मात्र नहीं है, वह इससे अधिक विकास प्रक्रिया है। विश्व की प्रक्रिया प्रकृति योजना के अनुसार गतिशील है। इतिहास के भीतर जो योजना कार्यशील है, उसका मूल लक्षण स्वतंत्रता की प्रवृत्ति है। इतिहास दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। इस दृष्टि से मानव स्वतंत्रता की प्रगति है। मनुष्य का आंतरिक तत्व बुद्धि है, अतः इतिहास बुद्धिमत्ता की प्रगति भी है और उन्नति भी। वे अतीत के प्रति उदासीन तथा भविष्य के प्रति आशान्वित थे। इतिहास मानव समाज को ऐसे युग की ओर ले जा रहा है जब बौद्धिकता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वे राष्ट्रीय जीवन और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच समन्वय की कल्पना करते थे। इतिहास का मुख्य लक्ष्य मानव का आत्मिक विकास और बौद्धिकता की उन्नति है। कांट नैतिकता के प्रति सचेत थे। नैतिकता पर आधारित न होने के कारण सभी कुछ कृत्रिमता के आवरण में ढका हुआ है। हर्डर, दर्शन शास्त्र के विकास में हर्डर का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी महत्वपूर्ण कृति तदपि एक अन्य इतिहास दर्शन, ये अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है। उन्होंने इस कृति के द्वारा इतिहास के मूलभूत प्रश्नों पर गंभीर विचार किया है। उन्होंने मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य तथा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की है। मनुष्य ईश्वर की महत्वपूर्ण कृति है। वह पशु पक्षी तथा वनस्पति से श्रेष्ठ है और इस श्रेष्ठता का कारण उसकी प्रखर बुद्धि है। मनुष्य केवल तर्कशील प्राणी नहीं है, वह निश्चय करने वाला तथा अनुभव करने वाला प्राणी है। इतिहासकार को मानव अतीत के अंदर जाकर उसकी वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। वह अनुभव को तर्क के ऊपर रखता है। इतिहास को समझने के लिए अंतर्दृष्टि की अपेक्षा होती है। हीगल, प्रोफेसर वॉल्स के शब्दों में हीगल को परिकल्पनात्मक दर्शन का संस्थापक कहा जा सकता है। उसने इतिहास दर्शन को नवीन स्वरूप प्रदान कर उसे नवीन दार्शनिक विचारों से अलंकृत किया। उसका इतिहास दर्शन गंभीर, मौलिक एवं युगांतकारी है। इतिहास घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उनके भीतर छिपी हुई कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा है। इतिहासकार केवल घटनाओं को निश्चित नहीं करता, बल्कि आंतरिक प्रवृत्तियों को हृदयंगम करता है। कार्य कारण की सूक्ष्म प्रक्रिया का जाल सार्वभौम तथा विश्वव्यापी है। अतः इतिहास मानवता की संपूर्ण प्रगति का वृत्तांत है। बर्बरता से सभ्यता तक समस्त विकास का कथानक है। विश्व इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। मानव स्वतंत्रता का अर्थ नैतिक बुद्धि का प्रसार है। राष्ट्र नैतिक बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, चरम सत्य विश्वात्मा है, जिसके विशेष गुण विवेक और स्वातंत्र्य होते हैं। इन गुणों की अभिव्यक्ति मानव मन में होती है। मानव मन के विवेक के द्वारा ऐतिहासिक ढंग से स्वातंत्र्य की अनुभूति तथा उसका विकास करता है। इस प्रकार विश्वात्मा की अनुभूति ऐतिहासिक प्रक्रिया में होती है। इस प्रकार दर्शन का ऐतिहासिकीकरण करने का श्रेय हीगल को है। मानव स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता की चेतना है। स्वतंत्रता का विकास चेतना का विकास है। इसी को हीगल ने मानसिक प्रक्रिया अथवा बुद्धि प्रसार कहा है। स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। प्राचीन काल में राजा स्वतंत्र थे, मध्य काल में कुछ लोग स्वतंत्र थे और आधुनिक युग में सभी स्वतंत्र हैं। किंतु यह स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा मानने में है। हीगल के अनुसार प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है। इसमें तथ्यों की पुनरावृत्ति होती है। इसका स्वरूप एक सा बना रहता है। प्रकृति विकासशील नहीं है और न तो इसका इतिहास होता है। इतिहास चक्रवत नहीं बल्कि रेखावत होता है। इसकी प्रवृत्तियों में नवीनता होती है। इतिहास प्रक्रिया ईश्वरीय परियोजना है। ऐतिहासिक विकास आकस्मिक नहीं अपितु आवश्यकता है। इतिहास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, इतिहास विचारों का क्रम तथा बुद्धि की क्रिया है। इसका स्वरूप मूलतः तार्किक है। हीगल के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जा सकता है। तार्किक प्रक्रिया के द्वंद्वात्मक और विरोधात्मक होने के कारण वाद, प्रतिवाद तथा साम्यवाद का उद्भव होता है। इसमें एक विरोध स्थिति को जन्म देती है और उन दोनों के संघर्ष से एक नवीन समन्वित स्थिति का जन्म होता है। हीगल का इतिहास दर्शन तार्किक विचारों का एक सुंदर समन्वय है। यूनान ने अपने विरोधी तत्व रोम को जन्म दिया और साम्यवाद के रूप में ईसाई धर्म का अभ्युत्थान हुआ। सापेक्षवादी आंदोलन। प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में सापेक्षवाद एक दर्शन है जिसका अभिप्राय प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को वैज्ञानिक विधा द्वारा प्रकाश में लाना है। सापेक्षवादी दो बातों पर विशेष जोर देते हैं, तथ्यों का संकलन तथा सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन। इस विधा के अनुसार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की गई। इतिहास के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधा के प्रयोग के प्रबल समर्थक कांते थे। उन्होंने इतिहास को सामाजिक भौतिक शास्त्र की संज्ञा दी है। उनका अटूट विश्वास था कि इस वैज्ञानिक विधा के द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सकती है। मामसेन तथा मेटललैंड जैसे इतिहासकारों ने इतिहास अध्ययन में इस विधा का प्रयोग किया तथा ऐतिहासिक ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत किया। परिणाम स्वरूप ग्रंथालयों, पुरा अभिलेखागारों तथा अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा। सामान्य तथ्यों की अपेक्षा विशेष तथ्यों की यथार्थता, विश्लेषण और व्याख्या के नवीन उपकरणों द्वारा इतिहास को अलंकृत किया गया। सार्वभौमिक इतिहास के क्षेत्र में इन विधाओं का प्रयोग कठिन प्रतीत होने लगा। परिणाम स्वरूप इतिहास लेखन को गहरा आघात हुआ। कांते ने इतिहास को समाजशास्त्र कहकर विज्ञान के स्तर पर रखा जिसका अभिप्राय मानवीय जीवन संबंधी घटनाओं का विश्लेषण कार्य तथा कारण के आधार पर उनकी विस्तृत व्याख्या थी। इतिहासकारों को समाजशास्त्रियों की श्रेणी में रखकर इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। सापेक्षवादी विचारकों के अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया तथा प्राकृतिक प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इतिहास में सत्यान्वेषण के लिए वैज्ञानिक विधा का प्रयोग अपेक्षित है। इतिहास को सामाजिक विज्ञान का विषय बनाने का एकमात्र से इन्हीं सापेक्षवादी विचारकों को है। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था जब हीगेल अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पर था। 1836 में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश किया। 1843 में पेरिस गए और अनेक समाजवादी विचारकों से परामर्श किया। 1844 में फ्रेडरिक एंजिल से ऐतिहासिक संबंध स्थापित हुआ। 1883 में देहावसान के समय तक वे सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते रहे। गार्डिनर ने स्पष्ट लिखा है कि उन पर हीगेल तथा सापेक्षवादी विचारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सापेक्षवादी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उन्होंने इतिहास पर विश्वात्मा के प्रभाव को अस्वीकार किया। इतिहास की घटनाएं विश्वात्मा के परिणाम स्वरूप नहीं घटती है, अपितु उनको प्रभावित करने वाले कुछ मूलभूत आर्थिक कारण होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप होता है। मार्क्स का विचार केवल परिकल्पनात्मक ही नहीं अपितु सापेक्षवादी सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक था। इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप होती है। सामाजिक परिवर्तन तथा राजनैतिक क्रांतियां मनुष्य के मस्तिष्क की उपज न होकर उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया के बदलने से होती है। जब मनुष्य उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं तो उनके कुछ निश्चित संबंध बन जाते हैं जो अनिवार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के इन संबंधों से समाज का आर्थिक ढांचा बनता है। यही वह आधारशिला है जिस पर वैधानिक और राजनीतिक प्रासाद खड़े होते हैं जिनके अनुरूप सामाजिक चेतना का विकास होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए निर्णायक होती है। एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर उत्पादन की भौतिक शक्तियां उत्पादन के साधनों से टकराती है, अर्थात वे संपत्ति के संबंधों से विपरीत हो जाती है। तब सामाजिक क्रांति का युग आता है। आर्थिक आधार पर परिवर्तन के साथ साथ समस्त विशाल प्रासाद जल्दी बदल जाता है। इसे प्राचीन सामंतशाही और पूंजीवादी युगों में बांट सकते हैं। उत्पादन के पूंजीवादी संबंध उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया से अंतिम विरोध रखते हैं। साथ ही साथ पूंजीवादी समाज के गर्भ में उत्पन्न की उन शक्तियों का विकास हो रहा है जो इस विरोध का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। यह सामाजिक निर्माण मानव इतिहास के प्रागैतिहासिक युग का अंतिम अध्ययन है। मार्क्स के सिद्धांत के निरूपण से यह सिद्ध होता है कि आर्थिक उत्पादन और उपयोग के विधान से मानव इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। यदि आर्थिक विधान अपनी उपयोगिता से आगे निकल जाता है तो इसके स्थान पर दूसरा विधान अपने आप आ जाता है। द्वंद्ववाद डायलेक्टिकल थ्योरी। यदि हिगेल ने इतिहास का प्रारूप दर्शन में पाया था तो मार्क्स ने उसकी कुंजी आर्थिक परिवर्तनों में ढूंढी है। प्रत्येक व्यवस्था में एक अंतर्द्वंद रहता है। एक वर्ग उत्पादन में परिश्रम करता है, दूसरा समाधान साधन संपन्नता के कारण अतिरिक्त फल का उपभोग करता है। सभी ऐतिहासिक समाज इस श्रमिक और अधनिक वर्ग के द्वैत को अपने अंतर लिए होने के कारण साधनों के विकसित होने पर संघर्ष और क्रांति से नष्ट हुए हैं। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित सदा एक वर्ग एक विरोधी स्थिति में रहे हैं और निरंतर कभी छिपा और कभी प्रकट युद्ध करते रहे हैं, जिसका अंत कभी समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन से हुआ, कभी दोनों वर्गों के समान विनाश से। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण वर्ग संघर्ष के इतिहास में परिणत होता है। इस इतिहास का अंतिम चरण पूंजीवाद की उत्पत्ति है। पूंजीवाद अंतर्द्वंद से ग्रसित है और एक क्रांति के द्वारा साम्यवाद की भूमिका बनेगा। इसका अंत भी क्रांति के द्वारा होगा। मार्क्स का विश्वास है कि एक ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण विश्व में एक साम्यवादी व्यवस्था रह जाएगी, श्रमिकों के शासन की स्थापना होगी। स्पेंगलर तथा टैनबी। 20वीं सदी की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल स्पेंगलर तथा टैनबी ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इतिहास में नवीन अर्थान्वेषण के द्वारा विश्व भ्रातृत्ववाद के सिद्धांत के माध्यम से सार्वभौमिक इतिहास लेखन किया। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक प्रकार का जीवन शास्त्र है। इसके नियम अटल तथा अलंघ्य है। मनुष्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है। वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। हम इसके भविष्य पर शोक प्रकट कर सकते हैं, परंतु परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का भविष्य निराशामय है। स्पेंगलर का विचार और सिद्धांत सारगर्भित है। इतिहास की गति प्रधान प्रक्रिया और विश्व की परिवर्तनशील चर्या के विषय में उनके विचार अत्यंत मार्मिक और तलस्पर्शी है। सामूहिक जीवन में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को भूलकर उसका एक अंग बन जाता है। मानवता को उन्होंने काल्पनिक और स्वप्निल बताया है, किंतु संस्कृति भावना में तो मानव का व्यक्तित्व ही तिरोहित कर दिया गया है। यदि मानव के ऊपर संस्कृति का जीवन है तो संस्कृति के ऊपर मानवता का जीवन क्यों नहीं है? इन त्रुटियों के बावजूद स्पेंगलर की कृति विचारवर्धक और भावोत्तेजक है। अन्य परिकल्पनात्मक दार्शनिकों की भांति टैनबी ने भी अपने ढंग से इतिहास के स्वर गति को पहचानने का प्रयास किया है। इतिहास के संबंध में उनका व्यक्तिगत दर्शन है। उन्होंने विश्व संस्कृतियों का अध्ययन करके इतिहास के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः टैनबी का दर्शन इतना जटिल एवं विस्तृत है कि उनके सर्वांगीण पर्यवेक्षण के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ अपेक्षित है। उनके इतिहास दर्शन का मुख्य विषय संस्कृति और धर्म रहा है। विशाल सामाजिक आंदोलनों और परिवर्तनों ने उनके ध्यान को आकृष्ट किया। उनकी मान्यता कि किसी समाज का विकास और ह्रास उसकी आंतरिक शक्ति और दुर्बलता के कारण होता है नितांत सारगर्भित और गंभीर है। उनका यह दार्शनिक दृष्टिकोण यथोचित प्रतीत होता है कि विश्व इतिहास का ढांचा सभ्यताओं और समाजों के संपर्क से निर्मित हुआ है। उनकी यह अवधारणा है कि समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। सृजन की सांस्कृतिक इतिहास की मूल प्रक्रिया है। टैनबी ने सृजन को आत्माभिव्यक्ति स्वीकार किया है। सांस्कृतिक परंपरा, मूल्यों के उन्मेष, उनके अनुचिंतनात्मक परामर्श, उनके संप्रेषण तथा तदुपयोगी संकेतों की रचना, उनकी साधना के लिए अपेक्षित संस्थाओं के निर्माण आदि से बनती और बढ़ती है। इस प्रक्रिया में प्रतिभावान महापुरुष की पथ प्रदर्शक और तीर्थंकर बनते हैं। समाज के प्रवाहात्मक स्तर पर संस्कृति का सृजनात्मक स्तर आरोपित रहता है। इन दोनों के संश्लेषण से ऐतिहासिक प्रक्रिया निष्पन्न होती है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का अधिष्ठान एक विशिष्ट संस्कृति से अनुप्राणित समाज होता है। इस प्रकार के समाज को तैनवी सभ्यता कहते हैं। इतिहास सभ्यताओं का होता है, यह कथन सर्वथा सत्य है। इस प्रकार तैनवी ने इतिहास में एक नवीन स्तर का अन्वेषण कर इतिहास दर्शन को नवीन प्रारूप दिया। इतिहासवाद हिस्टोरिसिज्म। अतीत का पूर्णत्व ही वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है। इस दृष्टिकोण से मानव हृदय में एक नवीन चेतना तथा उत्कंठा जागृत की तथा मनुष्य ने वर्तमान के संदर्भ में स्वयं को समझने के लिए अतीत के कोणों का अवलोकन किया। 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के पश्चात 150 शताब्दी तक इतिहास सिद्धांतों तथा अवधारणाओं ने यूरोपीय विचारधाराओं को सर्वाधिक प्रभावित, परिवर्तित तथा नियंत्रित किया। अनेक तर्क वितर्क के पश्चात इतिहास संबंधी एक अवधारणा निश्चित की गई कि किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को उसकी विकास प्रक्रिया की गति में अनुमानित किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया की गति प्रगति में नहीं अपितु समाज में पाई जाती है। इतिहास अध्ययन की यही विषय वस्तु है। इतिहासवाद अतीत के सत्यान्वेषण की एक विधा है। 18वीं सदी के प्रबुद्ध दार्शनिक इतिहासकारों में बाल्टियर, तुर्गो तथा कोंदोर्से ने अतीत की गवेषणा में इतिहासवाद का प्रयोग किया। इनका विश्वास था कि मानव स्वभाव परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनीय है। इस प्रकार इन लोगों ने विकास प्रक्रिया को स्वीकार करके यूरोपीय विचार क्षेत्र में एक नवीन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 19वीं सदी के पूर्व इतिहास अध्ययन ने ज्ञान की एक शाखा के रूप में मानवीय मानसिक प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया। ग्यूडो द रुगिरो ने अपनी इतिहासवाद संबंधी अवधारणा के विषय में लिखा, आध्यात्मिक सृष्टि की ऐतिहासिक विधा द्वारा सत्यान्वेषण की विकास प्रक्रिया, यदि दार्शनिक ने अतीत में आध्यात्मिकता की विकास प्रक्रिया को ढूंढने का प्रयास किया तो इतिहासवादियों हिस्टोरिक्स ने मानवीय मस्तिष्क तथा समाज की विकास प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। प्रायः सभी कहते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक युग है, इसका अभिप्राय ऐतिहासिक युग से है। इतिहासकारों ने इसको इतिहासवाद के युग की संज्ञा दी है। आज के वैज्ञानिक युग के पीछे एक दीर्घकालीन प्रयास की भूमिका का योगदान रहा है। इसका ज्ञान प्राप्त करना ही इतिहासवाद है। विकास प्रक्रिया में दो प्रधान तत्व परिवर्तन, चेंज तथा रचना सदैव क्रियाशील रहते हैं। इन तत्वों के अंतर प्रक्रिया से नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। दार्शनिक इतिहासकारों ने एक और मानवीय आध्यात्मिकता के क्रमिक विकास को तथा अन्य इतिहासकारों ने मानवीय समाज की भौतिक उपलब्धियों के क्रमिक विकास को ढूंढने का प्रयास किया है। इतिहासकारों के प्रयासों का सुखद परिणाम हुआ। वर्तमान को समझने के लिए अतीत का अवलोकन ही इतिहासवाद बन गया। इतिहासवाद की दरिद्रता पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। इतिहासकारों में कुछ निराशावादी थे। हिगेल का विश्वास इतिहास की उपयोगिता में नहीं था। उसके अनुसार इतिहास में शिक्षा के कोई भी तत्व नहीं है। नेपोलियन बोनापार्टा ने जब इतिहासकारों से पूछा तो उन लोगों ने इतिहास को अनुपयोगी कहा। हेनरी फोर्ड की दृष्टि में इतिहास एक अंधकारमय कोठरी है। इतिहास संबंधी इन तथ्यों ने पी लियान जैसे विद्वान को इस कथन के लिए विवश कर दिया कि आज इतिहासवाद के संबंध में कौन दावा कर सकता है कि इतिहासवाद जीवन तथा विचार संबंधी यथार्थ ज्ञान तथा दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। यदि इतिहासवाद को मानवीय प्रगति तथा विकास का मानदंड स्वीकार किया जाए तो दूसरी ओर इतिहास की घटनाएं मानव समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 का भयावह परिणाम तथा 1920 से 30 के बीच आर्थिक संकटों के परिणाम स्वरूप असंख्य लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा, क्या इसे मानवीय सामाजिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है? इन घटनाओं ने काल ए पापर जैसे विद्वान को इतिहासवाद की दरिद्रता लिखने के लिए विवश कर दिया। इसका अभिप्राय था कि यदि मनुष्य ने अतीत से शिक्षा ग्रहण की होती तो वह प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से समाज को बचा सकता था। अभी प्रथम विश्व युद्ध का घाव भर भी नहीं पाया था कि 20 वर्ष में दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिकाओं ने मनुष्य को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। क्या इसे विकसित समाज तथा प्रगति का सूचक माना जा सकता है? इतिहासवाद से क्षुब्ध होकर चार्ल्स ओमन ने इसे विषाक्त इतिहास की संज्ञा दी। अरब अहूदियों अरब यहूदियों के बीच निरंतर संघर्ष तथा दक्षिणी अफ्रीका में अल्प श्वेतों तथा बहुसंख्यकों अश्वेतों पर अत्याचार प्रगति तथा विकसित समाज का लक्षण नहीं कहा जा सकता है। इतिहास की इन दुखद घटनाओं से इतिहासवाद की दरिद्रता संबंधी अवधारणा की पुष्टि होती है। ज्ञान के रूप में इतिहासवाद E.H. कार के अनुसार कार्ल पॉपर अपनी नापसंद के प्रत्येक विचार को इतिहासवाद कहते हैं। हेगेल तथा कार्ल मार्क्स की दृष्टि में विश्व में सभी तत्व जड़ तथा चेतन सदैव संघर्षरत है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पुरातन का अंत तथा नवीन का अभ्युदय होता रहता है। इतिहास का यह क्रम सदैव क्रियाशील रहता है। टैनवी ने भी यह स्वीकार किया है। सामाजिक विकास तथा प्रगति के अड़तत्व निरंतर कार्यरत रहते हैं। एक समाज तथा संस्कृति के अंत होने पर उनका स्थान दूसरा समाज और संस्कृति ग्रहण कर लेती है। टैनवी ने भी हेगेल तथा मार्क्स के द्वंद्ववादी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। कार्ल पॉपर के इतिहासवाद संबंधी अवधारणा भ्रामक तथा अस्पष्ट है। M.C.D. आर्की ने इतिहासवाद शब्द का प्रयोग इतिहास दर्शन के समान अर्थ में किया है। ट्रायलेट्स ने जब इतिहासवाद का प्रयोग किया तो उसका अभिप्राय ऐतिहासिक ज्ञान तथा अनुभव से था। इस अवधारणा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, ऐतिहासिक ज्ञान तथा प्रकृति संबंधी ज्ञान का अन्वेषण। इतिहासवाद पर एक निबंध लिखकर उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग आध्यात्मिक तथ्यों की अपेक्षा लौकिक तथा कल्याणकारी होना चाहिए। इतिहास समाज में मानवीय कार्य व्यापार का अध्ययन होता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य मानवीय कार्यों पर प्रकाश डालना है, न कि अदृश्य आध्यात्मिक तत्वों पर, जिसका अभिप्राय स्वांतः सुखाय होता है। कार्ल मैनहीम की इतिहासवाद संबंधी यही अवधारणा है। 1936 में मीरेक ने इतिहासवाद दृष्टिकोण के माध्यम से प्राचीन तथा आधुनिक चेतना के अंतर को स्पष्ट किया है। हेगेल के इतिहासवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इतिहासवाद से इसका अभिप्राय ज्ञान से है। सामाजिक विज्ञान का यह दृष्टिकोण जो विज्ञान की भांति ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर सके तथा समाज के लिए अतीत से ज्ञान प्रस्तुत कर सके, उसे इतिहासवाद की संज्ञा दी जा सकती है। अतः इतिहासवाद को इतिहास दर्शन के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। दिलते की दृष्टि में ज्ञान के दो मार्ग हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान तथा मानवीय ज्ञान के लिए इतिहास। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की रचना करता है। ऐतिहासिक यथार्थ व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व होता है। समय तथा स्थान विशेष की इन अभिव्यक्तियों में आत्मा का प्रदर्शन होता है। इतिहासकार का कार्य मस्तिष्क प्रभावित विश्व को समझता है। इतिहास ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अतीत को समझने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक स्रोतों को मस्तिष्क की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। दिल्ते के अनुसार इतिहास आत्म प्रकाशकीय होता है। संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्ति होता है। जर्मनी में इतिहास की समाज शास्त्र है। इतिहास में मनुष्य का अध्ययन ऐतिहासिक जीव के रूप में होता है। इतिहास समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंधों के साथ नहीं देखता, अपितु उसको समय के प्रवाह में रखकर निरंतर विकासशील प्रक्रिया में देखता है। मनुष्य समय प्रवाह में जीता है, अतः वह गतिशील है। मनुष्य ऐतिहासिक है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। मानवीय अतीत की गतिशील प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप समाज की विकासशील प्रवृत्तियों का अध्ययन ही इतिहासवाद के रूप में प्रस्फुटित होता है। इतिहास अध्ययन वस्तुतः आत्म गवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमानकालिक जीवन को नियंत्रित करता है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि अतीत का भार सदैव हमारे साथ रहता है। युग का निर्माण अतीत के आधारशिला पर होता है, अतः वर्तमान को हम भूत की समष्टि कह सकते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से अतीत के पूर्णत्व से ही वर्तमान का आविर्भाव होता है। क्रोचे की दृष्टि में इतिहासवाद इस तथ्य का स्वीकरण है कि जीवन तथा यथार्थ इतिहास से अभिन्न है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अंग होते हैं। वर्तमानकालिक जीवन से संबंधित होने के कारण सभी इतिहास समसामयिक होता है। कॉलिंगवुड ने इतिहासवाद को चिंतन विधा के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होता है। इस प्रकार क्रोचे तथा कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास मानव ज्ञान का स्रोत है। मनुष्य प्रकृति के परिमंडल की अपेक्षा स्वयं अपने द्वारा निर्मित परिमंडल को अधिक गहराई से समझ सकता है। मनुष्य समसामयिक दृष्टिकोण से अतीत का निरूपण करता है। क्रोचे तथा कॉलिंगवुड इतिहास अध्ययन में वैज्ञानिक विधाओं के प्रयोग की वांछनीयता के प्रति सर्वाधिक सचेत है। सापेक्षवाद रिलेटिविज्म इतिहासवाद को सापेक्षवाद का जनक कहा जा सकता है। मानवीय कार्य एकाकी नहीं अपितु सामूहिकता का परिणाम होता है। वस्त्र उद्योग में अनेक लोगों का योगदान है। कृषक द्वारा कपास यंत्रों के निर्माण में अभियंताओं का योगदान, पूंजीपतियों द्वारा धन लगाना, श्रमिकों का श्रम, विक्रेताओं द्वारा बिक्री के पश्चात वस्त्र उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। इन्हीं पारस्परिक संबंधों को सापेक्षवाद की संज्ञा दी गई है। आर्टिगाइस जैसे के गैसे के अनुसार परिवर्तनशीलता विकास का लक्षण है। इस दृष्टि से मनुष्य विकासशील प्राणी है। जन्म लेते ही मनुष्य अपने को पूर्वजों द्वारा निर्मित समाज पाता है। सामूहिकता की प्रवृत्ति अर्थपूर्ण है। ऐतिहासिक ज्ञान का लक्ष्य मानवीय सामूहिकता का अध्ययन है। इतिहास परिवर्तन श्रृंखला में संबद्ध मानव अनुभव का शास्त्र है। यह न केवल जीवन का सुव्यवस्थित विज्ञान है, बल्कि इसे वर्तमान का विज्ञान भी कहा जा सकता है। इतिहासवाद के अंतर्गत सापेक्षवाद एक दृष्टिकोण है। इस सिद्धांत के अनुसार विकासशील प्रक्रिया अन्य परिस्थितियों से संबंधित होती है। इतिहास में घटना तथा व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समय, स्थान, वातावरण, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश में किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय कार्यों को उपयुक्त परिस्थितियां प्रभावित, प्रेरित तथा नियंत्रित करती हैं। वैकल लाभ की दृष्टि में मानवीय कार्यों तथा नैतिकता का मूल्यांकन भी सापेक्षवाद के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अच्छे तथा बुरे मनुष्यों में अंतर करना कठिन प्रतीत होता है। दास प्रथा, निरंकुशता, क्रांति, उपनिवेशवाद की उपयोगिता समय तथा स्थान के परिवेश में यथोचित थी। इतिहासवाद का यह अभिप्राय नहीं है कि चार्ल्स प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन की बुराइयों का प्रस्तुतिकरण नहीं, अभी तो इस बात का तथ्यान्वेषण है कि उन्हें किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा था। द्वंद्ववाद सिद्धांत के अनुसार सभी परिस्थितियों के उपज होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सभी सोचते हैं तथा कार्य करते हैं। चार्ल्स प्रथम, हिटलर तथा स्टालिन की निंदा करने का अभिप्राय ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है। परिस्थितियों के परिवेश में ऐतिहासिक व्याख्या को इतिहासवाद कहते हैं। इस व्याख्या को सापेक्षवाद सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता है। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अंतर्गत मुगल सम्राट अकबर तथा औरंगजेब को कार्य करना पड़ा था। युग परिवर्तनशील होता है। परिणाम स्वरूप परिवर्तित समाज में मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन स्वाभाविक होता है। अतः एक युग के दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती युग का मूल्य संपृक्त मूल्यांकन सर्वथा अनुचित होता है। बटरफील्ड के अनुसार यदि इतिहासकार एक दृष्टि अतीत तथा दूसरी दृष्टि वर्तमान पर रखकर अध्ययन करता है तो इतिहास में वह सभी बुराइयों तथा कुतर्कों का स्रोत बन जाएगा। यह अनैतिहासिक विचारों का मूल तत्व है। अतः बटरफील्ड का अभिमत है कि अतीत का अध्ययन वर्तमान के संबंध में नहीं बल्कि अतीत के संदर्भ में होना चाहिए। इतिहासवाद के प्रबल समर्थक फ्रेडरिक मेनेक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने परंपरावादी रांके से संबंध विच्छेद करके वर्कहार्ड से संबंध स्थापित किया है। इतिहासवाद की प्रमुख विशेषता परिवर्तन, विकास तथा निरंतरता होती है। यद्यपि 20 वर्ष पूर्व इतिहासकारों की अवधारणा थी कि निरंतरता इतिहास की प्रमुख विशेषता नहीं है। एक युग की परिस्थितियों, वातावरण तथा दृष्टिकोण से दूसरे युग का मूल्यांकन न्यायोचित नहीं होगा। वर्तमान सदैव अतीत से भिन्न होता है। परिवर्तनशील युग के स्वरूप के संबंध में रांके ने कहा था कि सभी युग ईश्वर के समीप है, तो उसका अभिप्राय था कि ऐतिहासिक विधियां महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण की यथार्थ को कोई भी इतिहासकार स्वीकार नहीं कर सकता है। अतीत संबंधी सभी सदियां रचनात्मक नहीं होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक तथा रचनात्मक अवस्थाएं होती है। कुछ स्थापना, शक्ति, संचय, चरम उत्कर्ष तथा पतन के काल होते हैं। इब्न खल्दून की इतिहास की अवयवी व्याख्या तथा कार्ल मार्क्स की वाद विवाद साम्यवादी व्याख्या उपर्युक्त अवधारणा की पुष्टि करती है। टैनबी ने संस्कृतियों के अध्ययन में चुनौती तथा प्रत्युत्तर द्वारा उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि की है। परिवर्तन तथा विकास के अणुतत्व संस्कृतियों के उत्थान तथा पतन में सदैव क्रियाशील रहते हैं। एजी लिटिल के शब्दों में इतिहासवाद का अभिप्राय अतीतकालिक संस्थाओं तथा विचारों का पुनः रेखांकन नहीं अपितु गतिशील प्रक्रिया में खोए हुए उस कोष की पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए जो हमारी सभ्यता को समृद्धि प्रदान करने में सहायक हो सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी युगों का स्वरूप रचनात्मक तथा उत्पादक नहीं होता है। ट्रायलेट्स के अनुसार कुछ प्रारंभिक प्रक्रिया परिपक्वता तथा पतन के काल होते हैं। इतिहास में एक को स्वर्ण युग, दूसरे को अंधकार तथा पतन का युग कहना अर्थहीन होता है। सापेक्षवादी दृष्टिकोण से विभिन्न युगों के अंतर को स्पष्ट करना तथा हमारे ऊपर उनके प्रभाव की व्याख्या करना ही इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल को निर्णायक माना जाता है, अतः सभी युग परिवर्तन के होते हैं। इस प्रकार इतिहास क्रांति का नहीं अपितु विकास की कहानी है। सर मॉरिस पाविक के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य समस्याओं के नवीन पक्षों पर प्रकाश डालना, उसे समस्या संबंधी नवीन विचारों द्वारा बंद नहीं अपितु खोलने का सतत प्रयास करना चाहिए। पुरातन तत्वों को समझने के लिए नवीन ज्ञान की नहीं अपितु नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक युग का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण सामाजिक आवश्यकता के अनुसार होता है। इतिहास की व्याख्या में नवीन दृष्टिकोण की उपादेयता को सभी ने स्वीकार किया है। नवीन युग में विश्व के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में अतीत का अध्ययन आवश्यक हो गया है। इसलिए क्रोचे जैसे दार्शनिक इतिहासकार ने इतिहास को समसामयिक कहा है। साहित्यकार की भांति इतिहास भी अपने युग का प्रतिनिधि होता है। अतीत के तथ्यों के आधार पर वह अपने युग के सामाजिक प्रश्नों का उत्तर है। इतिहासवाद की विशेषताएं। इतिहासवाद में केवल उन्हीं तत्वों का अन्वेषण होता है जिनका संबंध परिवर्तन तथा विकास गति से होता है। इतिहासवाद के दो प्रमुख तत्व होते हैं, ऐतिहासिक तथा इतिहासवादिता। बेकर लाभ के अनुसार कुछ तत्व ऐतिहासिक नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे 1917 की रूसी राज्य क्रांति ने धार्मिक भावनाओं को समाप्त कर दिया, यह ऐतिहासिक नहीं अपितु मान्यता प्रदत्त तथ्य है। इतिहासवाद में ऐतिहासिक घटना वही है जिसकी ऐतिहासिकता स्रोतों से प्रमाणित की जा सके। इतिहासवाद तथा व्याख्या। देवी के अनुसार अतीत के प्रति कृपा न हो तो उसके लिए और न अतीत के लिए बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए करते हैं जो सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। ओक्सफोर्ड के शब्दों में व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर अतीत का निर्माण हुआ है जो भविष्य को प्रभावित करेगा। इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मृत अतीत नहीं बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में सजीव अतीत होता है। इतिहास इतिहासकार का अनुभव होता है। इतिहास एक व्याख्या है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत को वर्तमान में परिणत कर देता है। यह कारण कार्य का अध्ययन है। अतीत के सत्यान्वेषण के लिए हीकेल ने द्वंद्ववाद, मार्क्स ने भौतिकवाद, सेंट सीमान तथा कांते ने सापेक्षवाद का प्रयोग किया। स्पेंगलर के इतिहासवाद का अभिप्राय सामाजिक मूल्यों के परिवेश में संस्कृतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। तानवी ने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के माध्यम से संस्कृतियों की व्याख्या की। मॉरिस पाविक के अनुसार व्याख्या को विस्तृतता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विशिष्ट दक्षता के अभाव में व्याख्या अर्थहीन होती है। यदि विशेषज्ञ इतिहास की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल होता है तो अशिक्षित उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। बेकर लाभ का अभिमत है कि अतीत की व्याख्या अतीत के मानदंडों के आधार पर करनी चाहिए। इसके लिए इतिहासकारों ने रचनात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। इसके अभाव में इतिहासकार रहस्यवादी अथवा निराशावादी दार्शनिक बन जाएगा। प्रोफेसर जेवी ब्यूरी का भी यही दृष्टिकोण है कि अतीत की समसामयिक राजनीतिक संबंध में संदर्भ में व्याख्या इतिहासकारों की नवीन पद्धति के प्रयोग के लिए विवश कर सकती है। अतीतकालिक जिस व्यक्ति का अध्ययन करते हैं वे चीर निद्रा में शांत पड़े हैं, अतः उन पर वर्तमान मानदंड से निर्णय लेना सर्वथा अनुचित है। समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या इतिहासवादियों की दृष्टि में प्रतिकूल है। इतिहास बटरफील्ड ने वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या को अनैतिहासिक कहा है। इतिहासवाद का यह नैतिक आदर्शवादी दृष्टिकोण आधुनिक इतिहासकारों को ग्राह्य नहीं है। आधुनिक इतिहासकार अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान दृष्टिकोण से वर्तमान के लिए करता है। उसका अभिप्राय अतीत का अध्ययन सुसंपन्न वर्तमान को प्रशिक्षित करने तथा सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। इतिहासकार के मस्तिष्क में मृत अतीत सजीव वर्तमान बन जाता है। संपूर्ण वर्तमान अतीत से उद्भूत होता है। डेविड थॉम्पसन की दृष्टि में जब तक वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या न हो तब तक व्याख्या का कोई अर्थ नहीं है। अतीत के तथ्यों का वर्तमान इतिहासकार से संबंध आदान प्रदानात्मक होता है। अतीत भविष्य तथा वर्तमान एक परिकल्पनात्मक विभाजक रेखा है। वर्तमान में इतिहासकार की रुचि इतिहासकार को अतीत की गवेषणा के लिए प्रेरित प्रोत्साहित तथा विवश करती है। इतिहासकार की रुचि परंपरा के साथ आरंभ होती है। परंपरा का अभिप्राय अतीत के आदर्शों और परंपराओं का भविष्य की गोद में संप्रेषण होता है। अतः अतीत में भविष्य के प्रति रुचि सदैव स्थित रहती है। अतीत काली ऐतिहासिक तथ्यों का चयन तथा इतिहासकार के व्याख्या की अंतर प्रक्रिया का स्वरूप अतीत का वर्तमान को संपृक्त करने वाला संबंध होता है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। ईएचकार ने उचित ही कहा है। वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया का की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान का अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। रांके का अभिमत है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत संबंधी निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए मार्गदर्शन होता है। इसलिए एक्टन को वर्तमान में मानवीय कार्यों का फल कहा है। अतीत और वर्तमान का संबंध अन्योन्याश्रित है। इतिहासवाद विकासोन्मुख समाज की व्याख्या है। इसे कारण कार्य संबंध की व्याख्या कहा जा सकता है। निष्कर्ष: इस प्रकार आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी, सापेक्षवादी, मार्क्सवादी की भांति इतिहासवाद भी अतीत की गवेषणा की एक विधा है। इतिहासवाद तथा अन्य विधाओं में अंतर केवल इतना है कि अन्य विधाओं के माध्यम से अतीत का वर्तमान में के परिवेश में परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जबकि इतिहासवादी सापेक्षवाद के परिवेश में विकासशील प्रक्रिया की गवेषणा करता है। इतिहासवाद अतीत में गति का अन्वेषण करता है क्योंकि इतिहास गतिशील है। वर्तमान की सामाजिक तथा मौलिक भौतिक उपलब्धियां विकासशील प्रक्रिया के परिणाम होती है। हेनरी पीरेन की दृष्टि में इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। प्रायः मनुष्य की उपलब्धियां वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के परिवेश में होती है। इन सभी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सापेक्षवादी के परिवेश में किया जाता है। इस प्रकार इतिहासवाद समाजों के विकास का व्याख्यात्मक वर्णन होता है। विकास प्रक्रिया की गतिशीलता का परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण इतिहासवाद का अभिप्राय होता है। इतिहासवाद तथा इतिहास दर्शन का उद्देश्य ऐतिहासिक ज्ञान से है। इसे दो विधाओं द्वारा समझा जा सकता है, विश्लेषणात्मक तथा परिकल्पनात्मक। विश्लेषणात्मक विधा का स्वरूप वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक है। परिकल्पनात्मक विधा द्वारा दार्शनिक इतिहासकारों ने इतिहास के स्वरूप को अपने अपने ढंग से निरूपण किया है। इब्न खल्दून, कांट, हर्डर, हीगल, मार्क्स, स्पेंगलर, टैनवी, क्रोचे तथा डिल्थे ने अपने ढंग से इतिहासवाद की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त सेंट सीमान, कामते तथा मार्क्स की सामाजिक तथा आर्थिक व्याख्या सर्वाधिक लोकप्रिय है। आर्थिक उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था सामाजिक स्थिति को नियंत्रित करती है। द्वंद्ववाद सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था का अंत तथा दूसरे का अभ्युदय इतिहास की गति को नियंत्रित करता है। यदि ब्यूरी ने इतिहास को वैज्ञानिक विधियों से अलंकृत करने का प्रयास किया तो तुर्को कोंदोर्से एक्टर ने इतिहास में निरंतरता तथा प्रगति के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया। यदि इतिहास दर्शन का लक्ष्य किसी विशेष अर्थ की गवेषणा है तो इतिहासवाद का अभिप्राय इतिहास में विकासशील प्रवृत्तियों का रहस्योद्घाटन, इतिहासवाद ऐतिहासिक ज्ञान की विश्लेषणात्मक तथा परिकल्पनात्मक व्याख्या है।